शिव जी से पूछा कि आप मुझे बताइए कि बलि महाराज को इतनी कृपा कैसे मिली, नरलोक में रहते हुए भी तो उसे इतनी कृपा कैसे मिली कि जिससे भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। तो शिव जी ने कहा तो नारद मुनि ने पूछा कि बलि महाराज ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, या उसने ऐसा भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कोई कार्य मतलब ऐसे कोई कोशिश की, या फिर भी उन्हें भगवान की इतनी कृपा कैसे मिली। जैसे बाकी लोग को हम देखते हैं कि उन्होंने इतना तप करते हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, तो बलि महाराज ने ऐसे कुछ नहीं किया, नारद मुनि ने पूछा तो, लेकिन फिर भी भगवान पे। और दूसरी बात यह है कि बलि महाराज एक असुर योनि में रहने के कारण भी उन्हें इतनी कृपा कैसे मिली। तो शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर मान लो ठीक है, बलि महाराज ने भगवान को दो पग भूमि दो लोग दे दिए, तो इससे भी देखा जाता है कि दो पग से भगवान को संतुष्ट करना या प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो तुच्छ है। अगर मान लो कि अगर कोई करोड़पति आता है, अगर उसके पास एक साधारण व्यक्ति जाके मांगता है कि मुझे ये मुझे कुछ ऐसा है घर बनाने के लिए, या ऐसी कुछ वस्तु दे दो जिससे मैं खुश रहूं, या ऐसे करोड़पति आता है, कोई टाटा बिरला आता है, तो अगर ये सामान्य व्यक्ति उस करोड़पति को अगर दो पग भूमि या एकड़ जमीन दे देता है, तो उससे उस करोड़पति को क्या फायदा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए तुच्छ है। इसी तरह शिव जी बोलते हैं कि बलि महाराज ने जो भगवान को दो पग भूमि दी, मतलब दो लोग दिए, इस ब्रह्मांड के दो लोग दे दिए, तो उससे क्या फायदा हुआ, कोई एकदम बड़ी बात नहीं है। तो इससे ये देखा जाता है कि तो फिर भी तो शिव जी कहते हैं कि उसने इस तरह बड़ी बात तो एकदम किया नहीं, कि आश्चर्य नहीं है कि, क्योंकि उसने अब यह भी बोल सकते हैं कि उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु ने जो कहा करने के लिए नहीं किया। अगर गुरु की बात मान लेते या फिर उनका आज्ञा पालन कर लेते तो कुछ हद तक ठीक था, तो भगवान उसे तो समझ सकते थे, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो इससे यह पता लगता है कि हम भगवान के साथ हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, तो इससे उनके सामने हम सिर्फ यात्रा कर सकते, उन्हें हम कुछ दे नहीं सकते। तो जैसे आगे शिव जी कहते हैं कि बलि महाराज ने सूतलोक में भगवान ने उनको पूरा ऐसा राज्य सूतलोक दे दिया जहां वो उनके द्वारपाल बने। तो शिव जी आगे कहते हैं कि भगवान वामन की कृपा करने का कारण क्या है बलि महाराज पर, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज से आए थे, उनके परंपरा से आए थे और उनके पोते थे, इसलिए भगवान ने उन पर यह कृपा की। इससे देखा जाए तो बलि महाराज का कुछ क्रेडिट की तरह से कि जैसे कि बलि महाराज भगवान को बलि महाराज पर प्रसन्नता हो। अगर हम और दूसरी दृष्टिकोण से देखे जाए तो बलि महाराज ने सब देने के बाद भी तीसरा पग कुछ नहीं था देने के लिए, तो बलि महाराज ने नम्रता से अपना सर झुकाया, तो ये भी एक समर्पण का हिस्सा हो सकता है कि जिससे भगवान थोड़ा उससे प्रसन्न हुए हो। लेकिन वो भी बलि महाराज को ये ऐसे करने में क्यों उनके दिमाग में आए बलि महाराज के, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज से थे, इसके लिए बलि महाराज को इतनी बुद्धि आई कि मैं अपने आप को समर्पण कर सकूं। तो फिर अभी देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से देखा जाता है तो वही चीज को बुरी दृष्टि से भी किया और अच्छाई दृष्टि से भी किया तो फर्क क्या होता है। अभी मान लो कि अगर हम ऐसे हमारे स्तर पे देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई ज्यादा पीछे पड़ा जाए, मांगता रहे ये दो वो दो, तो या कोई सामान ऐसा फेस्टिवल के टाइम या मतलब बाहर के लोगों में देखा जाता ना कि बार बार पीछे पड़ते हैं, ये किधर रखूं, वो किधर कर रखूं, ये क्या करूं, उसका चीज का क्या करूं, तो आदमी जो जिसके पीछे पड़ा रहता है वो क्या बोलता है, मेरे सर पे रख ला पता नहीं उधर मेरे सर पे लाके तो क्यों हो जाए। इसी तरह बलि महाराज ने वामन देव ने कहा कि तुमने मुझे ये कठोरता से ये किया हुआ, तो बलि महाराज वामन देव ने कहा कि तुमने वचन दिया था कि तीन पग भूमि में दूंगा मैं, तो मैंने ये लोग ले लिया, नीचे के लोग ले ले, ऊपर के लोग ले ले, स्वर्ग लोग सब जितने ब्रह्म लोग अंदर ले ले, अब तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, ऐसा वामन देव ने बलि महाराज को पूछा। तो उस वक्त बलि महाराज ने ये नहीं कहा कि मेरे सर पे रखो, उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा शरण करता हूं, मैं पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो ये शब्द सुनने के बाद उस वक्त वामन देव प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने वामन देव ने कहा, फिर उसके बाद वामन देव ने उनके सर पे मस्तिष्क पे अपने चरण, तो ऐसी कृपा मिलती है। तो हम ये देखेंगे कि वही वस्तु को, वही चीज को दोनों दृष्टि से देखा जाए तो वो मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड है कि वो कृपा लेना चाहता है या फिर अपना अधोगति करना चाहता है। अगर हमारे ही सामान्य व्यवहार में देखा जाए तो हम किस तरह व्यवहार करते हैं, तो यही फर्क है कि एकदम हम किस पद चिन्हों पर चलते हैं, तो हमारे संगीत कौन है, हम उनसे क्या सीखते हैं, तो यही हमें सिखाया जाता है। जैसे बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज से वंश चाहे थे, उन्होंने सीखा कि प्रहलाद महाराज ने ऐसे ऐसे किया, तो उसी से असुर होने के बावजूद अगर और कोई दूसरा असुर रहता क्या करता, तो तलवार लेके खड़ा हो जाता था भगवान से, जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया था। तो उसी तरह हमें हमारे दिन दिनचर्या में जो भी कार्य करते समय, किससे भी मिलते समय, अगर पूरे शरणागत भाव से अगर उससे मिलेंगे, आदान प्रदान करेंगे, उसके स्वभाव के विपरीत जाकर, तो हमें वो कृपा मिल सकती है। जिस तरह बलि महाराज को एक दृष्टि से कृपा मिली, सिर्फ उतना ही एक हिस्सा था कि जिससे वामन देव, उतना ही छोटी सी कृपा के कारण वामन देव बलि महाराज से प्रसन्न। तो आगे शिव जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान को इतने प्रिय क्यों है, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि मैं लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, हम भी सेवा करते हैं, तो प्रहलाद महाराज भगवान को इतने प्रिय क्यों है, तो शिव जी, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ये भी होने चाहिए। लक्ष्मी जी तो अनंत काल से भगवान के चरणों की सेवा करते रहते हैं, तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी भी इतनी सेवा करते रहते हैं, पूरी सृष्टि का रचना की, इतना देखभाल मैनेजमेंट करते रहते हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं होते। मैं भी उनका ध्यान धारणा में बैठ रहता हूँ, इतनी सेवा करते रहता हूँ, जो भी सेवा है तो मैं करते रहता हूँ, फिर भी भगवान मेरे पर प्रसन्न क्यों नहीं होते, तो प्रहलाद महाराज से क्यों प्रसन्न हुए। सेवा तो सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान उन तीनों के बजाय प्रहलाद महाराज के ऊपर प्रसन्न क्यों हुए, ऐसा शिव जी ने नारद मुनि से प्रश्न। तो शिव जी कहते हैं, फिर उसी के उत्तर में शिव जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने किस तरह की तपस्या की और कैसे की। अभी मान लो इसे हम हमारे लेवल पे भी देखते हैं और ऊपर के लेवल में भी देखते हैं, तो मान लो कि अगर हम प्रहलाद परत पहले मैं बता दू, प्रहलाद महाराज देखें पहले, प्रहलाद महाराज ने कैसी तपस्या की और भगवान के चिंतन करते हुए उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऊपर से पहाड़ के नीचे भेजा, फेंका गया, तो फिर भी भगवान का चिंतन। अगर यही मान लीजिए अगर हमें ऐसा कोई सेवा करते हुए कोई कठोर शब्द कह देता कुछ, तो हमारा रिएक्शन कैसे रहता उस वक्त, उसे कांटे को खा जाते कि नहीं, चाहे वो कोई भी रोक छोड़ते क्या हम उसे, नहीं बोले तो इतनी सेवा करो ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुननी पड़ती। लेकिन प्रहलाद महाराज ने चूर तक नहीं की, एक शब्द नहीं उच्चार किया, सिर्फ भगवान के चिंतन करते होते जो भी होगा वो हर जगह भगवान को ही देखते थे, तो यह। और दूसरा, प्रहलाद महाराज को सांपों के बीच में डाला गया फिर भी कुछ नहीं गए, तो हम सेवा करते समय हमारे ऊपर कोई आजू बाजू कीड़ा बेड़ा कुछ ज्यादा है ऐसे डकते फूक मार देते उनको झटकते, इतना हमारे लेवल पे हम कर देते। तीसरा है कि प्रहलाद महाराज को ऐसा भालों से असुरों की तरह ऐसा नोका गया, उन्हें चुबाया गया, तो अभी हम कार्य करते समय अगर हमें कुछ तकलीफ होती है तो हमारा उस वक्त रिएक्शन कैसे होता है। तो इसी तरह अपने और भी ऐसे प्रहलाद महाराज को अग्नि में डाला गया, रखा गया, फिर भी वो भगवान के चिंतन करते रहे, ये सब सेवा एक तरह से करते रहे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें इस भौतिक दुनिया में दावा अग्नि को कहा गया, इस भौतिक दुनिया को, हम इस अग्नि में रहते हुए भी हमारा मस्तिष्क, हमारा चेतना, हमारे चिंतन कैसा रहता है भगवान के प्रति, तो हमें ये स्तर पे सोच के, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंका तो हम भी नीचे गिरेंगे तो हमारा भी भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं। उस वक्त हमारी कोई भी कार्य, कोई भी सेवा करते समय हमारा चिंतन, हमारी चेतना कैसे रहती है वो इम्पोर्टेंट रहता है। हम क्या कार्य कर रहे हैं, ज्यादा भक्ति में हम कैसे कोई भी सेवा क्या कार्य करते हैं वो महत्व नहीं रहता, वो महत्व रहता है कि हम किस भावना से, कैसी चेतना से हम वो कार्य करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को इतनी तकलीफें, इतनी परेशानी थी, इतनी कठोरता से उनके ऊपर किया गया, तो भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अगर हमारे साथ कहे तो मैं इतना कुछ करता हूँ, सब करता हूँ, फिर भी भगवान देखो मैं इतना सोलह माला जप करता हूँ, सब मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, थोड़ी तकलीफ हमारे जीवन में आ गई तो हम क्या कहते हैं कि देखो मैंने इतना सब कुछ किया, भगवान ने मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना भगवान ने ऐसे करने के लिए। यही फर्क है कि उच्च भक्तों में और एक निम्न भक्तों में फर्क है कि उच्च भक्त क्या करता है, जो भी कृपा जो भी ऐसे आए तो वो अपने ऊपर भगवान की कृपा समझ के लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस तौर पर नहीं होने के कारण हम कंप्लेन करने लगे कि भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, भगवान है ही नहीं। हम ऐसे उनके ऊपर दोष डालते रहते हैं और कहते हैं कि ये सब भगवान के कारण हो रहा है। लेकिन उस वक्त हम हमारा दोष नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम किस तरह कार्य करना चाहिए, हम उस वक्त वो नहीं सोचते। तो इसी तरह तो ये शिव जी कहते हैं नारद मुनि से कि ये फर्क है, क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज से इसलिए प्रसन्न है क्योंकि कोई भी कार्य करते समय वो प्रसन्न भगवान के प्रति उनका कोई दोष नहीं रहता, ना कि कंप्लेन करते कि ऐसा क्यों किया, मैं इतना सब करता। तो आगे कहते हैं कि प्रहलाद भगवान अनेक, अभी हम आगे ये देखेंगे कि शिव जी नारद मुनि से ऐसे बात करते हैं कि उनके दोनों के वार्तालाप में कि आगे और भी ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। अभी वो आगे कौन से भक्त हैं, उनके कुछ भक्तों के हम ऐसे देंगे जैसे प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं कि उन भक्तों के साथ भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। फर्क क्या है कि भगवान लोग भगवान के पीछे भागते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भगवान को कुछ तकलीफ है भगवान के पीछे भागे, शिव जी भी कुछ प्रॉब्लम आया भस्मासुर का कथा ही तो भगवान के पीछे भागे, लक्ष्मी जी को भी कुछ तकलीफ कुछ आई तो भगवान के पीछे चल जाती। लेकिन ये भक्त ऐसे हैं कि भगवान उनके पीछे भागते हैं, ये ऐसे भक्त हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान प्रसन्न रहते। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का 21 पुस्तें क्यों, कहते हैं कि 21 पुस्तें भगवान जो भगवान की अच्छी तरह सेवा करेगा, पूरी समर्पणता के साथ करेगा कार्य, तो उनकी 21 पुस्तें पूरे उद्धार कर देंगे, 10 पिछले 10 आगे के और एक प्रेजेंट, ऐसे 21 पुस्तें कर देंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे, तो इससे प्रहलाद महाराज को कर दिया, किसी एक उदाहरण दिया। अभी ये देखेंगे आगे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कौन से इसमें जन्म लिया, वंश में मलेच्छ मुसलमान की इनको उनमें उन्होंने जन्म, लेकिन उनकी भावना कैसी थी कि एकदम हमेशा भगवान के चिंतन। हरिदास ठाकुर जी के साथ ये ऐसा किया गया कि उन्हें 22 मार्केटों में पीटा गया, इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो जो पीटने वाले जो लोग थे जल्लाद थे, उन्होंने क्या किया कि कहा कि आप मरो, आप नहीं मरेंगे तो ये काजी हमें मार देगा, ये राजा मुझे मार देगा, तो इसलिए आप मरो। लेकिन उस वक्त भी हरिदास ठाकुर ने उनकी कृपा करने के लिए समाधि में आके अपने आप को ऐसा लगा कि उन जल्लादों को लगा कि मर गए। लेकिन उस 22 मार्केट में पीटते समय भी हरिदास ठाकुर ने ये नहीं कहा कि मैं 192 मालिक जप करता हूं फिर भी मुझे इतनी मार करती मैं कम कर देना मालिक, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, हमेशा गौरव महाप्रभु नित्यानंद का गौरव महाप्रभु का चिंतन करते रहे, इससे क्या होगा भगवान कैसे प्रसन्न हो गए उन पर। वो उन्होंने भगवान ने अपने आप को हरिदास ठाकुर के ऊपर समा लिया, तो जिससे जो भी उन्हें कोड़े बैठते थे चाबुक से कोड़े बैठते थे तो क्या सब भगवान को ही लगते थे, उन्हें कुछ नहीं होता। क्यों इस तरह की हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर 24 घंटों में से 22 घंटे जप करते थे, और हम 24 घंटों में से 22 घंटे क्या करते हैं आप लोग के मन में, बोले सबको ही मन में बोलने की जरूरत है, और 2 घंटे जप करते हैं हम लोग, बोले हम सब लोग, और उसके बीच में भी बहुत कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए तो हम हरिदास ठाकुर देखिए, उन्होंने जप करते हुए इतना सब करते हैं लेकिन फिर भी हमेशा किसी भी स्थिति में रहने के कारण भी भगवान का चिंतन करते थे, ये इसलिए। और जब महाप्रकाश लीला आई तो उस वक्त हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रकाश लीला के वक्त भगवान ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मैं चिंतन कर सकूं, कोई भी योनि में हो आपका सिर्फ चिंतन कर सकूं, आपके नाम को एक चिंतन कर सकूं, यह अध्यास। और दूसरा है श्रीधर कोलाविचा। अगर श्रीधर कोलाविचा की देखा जाए तो श्रीधर कोलाविचा कौन थे? एक ब्राह्मण थे जो जिनका कपड़े कैसे थे कि एकदम फटे फटे कपड़े, जिन्हें वो गांठ मारकर रखा, गांठ मारकर उनके कपड़े बोले तो एक गांठ मारकर बना हुए कपड़े, धोती कुर्ता ऐसे कपड़े। और उनका घर कैसा कि जो बाहर भी अगर बारिश हो, बाहर रहो या अंदर हो, एक ही बात, छतरी भी नहीं उनके पास, जैसे कि अंदर लेके छतरी लेके बैठे, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सुंदर खोले थे। लेकिन उनका कार्य, वो कार्य क्या करते थे, केले के पत्ते और केले के खुड़ है वो ऐसे बेचा करते थे मार्केट में जाकर, और उसने भी 50% डिस्काउंट में बेचा करते थे, ये उनका कार्य। लेकिन उनका दिनचर्या कैसे रहते, मतलब भगवान के प्रति कैसे समर्पित है, हमेशा 24 घंटे हरिनाम का जप करते थे। हरिनाम का जप करने के कारण आसपास के लोग भी दिन रात जप करते थे, आसपास के लोग परेशान होकर बोलते थे चुप बैठे, जब उनको अनाज फेंक कर देते थे सिद्धर कोलाविचा के ऊपर, कहते थे ये खा और चुप बैठ, भूखा होने के कारण तो चिल्लाते थे। तो इसलिए तो जब श्रीधर कोलाविचा मार्केट में जाकर केले बेचा करते थे, उस वक्त चैतन्य महाप्रभु आते थे उधर, चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ पता था कि ये हरिदास, ये श्रीधर कोलाविचा कौन है। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, 50% डिस्काउंट में बेचने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु से वो बार्गेनिंग करते थे, भाव तोल करते थे कि आप इतने में मुझे इतने में चाहिए, उतने में चाहिए, मतलब एक तरह से कहा जाए, भौतिक दृष्टि से कहा जाए कि चैतन्य महाप्रभु दादागिरी करते थे उनके ऊपर, श्रीधर कोलाविचा के ऊपर, कि मुझे इतने में चाहिए, मैं इतने लेके जाऊँ, झगड़ा करते थे उसके ऊपर, मैं इतने में लेके जाऊँ, देना दे, नहीं तो फिर देख मैं क्या करूंगा, ऐसा, मतलब ये प्रेम का आदान प्रदान भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो इससे वो चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती लेके चले जाते थे। तो फिर ये इस तरह का कार्य करते समय, तो जब ये महाप्रकाश लीला के वक्त क्या हुआ, तो श्रीधर कोलाविचा सामने उनको लाया गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते तुम, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तीनों लोग दे सकता हूँ, सब ऐश्वर्य दे सकता हूँ। तो श्रीधर कोलाविचा ने क्या मांगा, अगर हमें ऐसा कहा जाए तो हम क्या मांगेंगे, हर एक के दिमाग में अलग अलग कुछ रहेगा ना। अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान के हमने सामने कहा कि मांगो, तुमको जो कुछ चाहिए मांगो, अभी खुद ही आप सोचिए क्या क्या मांग सकते। लेकिन श्रीधर कोलाविचा ने क्या मांगा कि मुझे वो आपकी वही छवि देखनी है जो मेरे साथ आके ऐसा बार्गेनिंग करते थे कि मुझे नहीं इतने में चाहिए, तो मुझे सिर्फ वही छवि आके ऐसे थे। तो इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के पीछे भगते। और एक ऐसे भक्त है पांडव लोग। पांडव लोग के साथ उनके जीवन में क्या हुआ, महाभारत में पूरी उनका जीवन चरित्र बताया कि पांडव को बचपन में ही भीमसेन को जहर खिलाया गया, उनके पत्नी को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उन्हें जलाने की कोशिश की पांडव को, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा जो भी है, भगवान उनके साथ रहने के बावजूद फिर भी उन्होंने कहा कि किसी ने भी कंप्लेन नहीं कहा कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, हमें इतनी तकलीफ परेशानी क्यों आ रही है, फिर भी ऐसे किसी ने नहीं कहा। तो आखिर में सब होने के बाद भी, धोने के बाद भी कुंती महारानी क्या कहती है कि हमें ऐसी तकलीफें आने लगी जिससे कि हमें आपका हमेशा स्मरण रहे, ऐसा कुंती महारानी कहा। तो यहां पर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर हम ऐसी प्रार्थना भगवान को करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये इतनी परेशानी पहले ही है कि हमारे कर्म के कारण, हमारे कार्य के कारण जो भी तकलीफें इस वक्त आ रही है वो सब हमारे कर्मों के कारण ही आ रही है। अगर भगवान की कृपा हुई तो सोचिए क्या हो जाएगा। इसलिए भगवान ये जो तकलीफें परेशानी हमारे जीवन में आ रही, तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, अभी के कर्मों के कारण ही आ रही है, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान ने अभी हमारे पर कृपा की ही नहीं। अगर भगवान कृपा करने लगे तो फिर सोचिए हरिदास ठाकुर, श्रीधर कोलाविचा, पांडव, क्या हम कर सकते हैं उतना प्रहलाद लोगों की जितनी या उनके ऊपर भौतिक दृष्टि से यात्राएं हुई, क्या हम वो झेल सकते हैं, नहीं, हम ऐसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो फिर प्रहलाद भगवान जब नसीर ने सबको मारने के बाद प्रहलाद महाराज से भी पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप मोक्ष ले लो मोक्ष ले लो, ऐसा प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने बार बार बोला कि मोक्ष लो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया कि मैं आपके साथ व्यवहार बिजनेस नहीं करना चाहता, व्यवहार नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको यही चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में आप मुझे कोई भी योनि में कितनी योनियों में भी डाल दो, मैं सिर्फ आपका नाम रूप रूप गुण रूप का मैं चिंतन करते हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं सिर्फ आपका मुझे स्मरण रहे। प्रहलाद महाराज ने ये उनसे मांगा। तो इसलिए हमें इसी तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान जिससे क्या करते हैं कि जिस पर कृपा करते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। तो छीनने के बाद हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भगवान के सामने अल्टर के सामने जाते हैं तो हमें सोच समझ कर भगवान से मांगना चाहिए। तो ऐसा नहीं हमने भावुक होकर या ऐसे भगवान से मांग लिया, अगर भगवान ने दे दिया तो भगवान की कृपा कहां से भी आ सकती है, आगे से भी आ सकती है, साइड से, ऊपर से, पीछे से, कहां से भी आ सकती है। तो इसलिए हमें कोई गारंटी नहीं कि भगवान कैसी कृपा कर देंगे, और कृपा आ भी गई अगर समझो एक बार भगवान ने कृपा कर भी दी तो उसे झेल नहीं करने के कारण तो हम भगवान को दोष देंगे। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति ऐसे करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें इन भक्तों के पद चिन्हों का करते फॉलो करते हुए, उनके जैसे नकल नहीं करते हुए, उनको अनुसरण करते हुए, उनके जैसे कार्य किया हमारे लेवल पर वैसे कार्य करते हुए हमें हमारे जैसे प्रहलाद महाराज ने अपनी किस पुस्तक का उद्धार किया, उसी तरह हम भी अगर अच्छे भक्ति करेंगे, ये सब करेंगे, तो हमें भी हमारे ऊपर जो डिपेंड है, जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार या जो कोई भी हमारे संबंधित है, हमारे पर निर्भर है, तो हम भी उनका उद्धार कर सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें तभी भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, लेना चाहिए या दूसरों को हमें कुछ बताने के, जब हम तक उसको उद्धार नहीं करना। उदाहरण के तौर पर अगर एक पति पत्नी पति अगर अपने घर की जिम्मेवारी लेता है तो पति का कर्तव्य या पत्नी का दोनों में से कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को उद्धार कर सके, उन्हें भक्ति में ला सके, तभी उनका जीवन सरल ठीक है। अगर पति पत्नी क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, मैं इतनी जायदाद कमाऊंगा, सब करूंगा, अपने बच्चों का देखभाल करूंगा, उन्हें प्रॉपर्टी बना के दूंगा ताकि फ्यूचर में उनके तकलीफ ना हो, वो आराम से रह सके। तो इसी तरह लेकिन यहां कहते हैं कि भगवान के प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लोग परेशान क्यों रहते हैं दुनिया में, क्योंकि वो भूतकाल में किए हुए कार्यों से लेकर रोते हैं, भविष्य के कार्यों को जो नहीं हुआ उसको देखकर चिंता और परेशान रहते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। भक्ति का अर्थ है कि वर्तमान में रहकर हमें अच्छे से भक्ति कार्य करते रहने चाहिए, भूतकाल में क्या हुआ भूल जाना चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला उसका चिंतन नहीं करना। इसी तरह अगर हम माँ बाप को अगर ये किसमें यह आता है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, मतलब अगर माता पिता को अपने भक्तों का मतलब अपने पर निर्भर बच्चों का ये नहीं सोचा है कि फ्यूचर के लिए उसके लिए प्लान करना चाहिए, सब ये करते रहे, अगर बच्चा समझो नालायक निकला तो जितना भी कमाया वो नष्ट करेगा ही, खा लेगा सब कुछ, बर्बाद करेगा। अगर समझो बच्चा एकदम होशियार निकला सब निकला तो फ्यूचर में जाके कमा के अपना सब कर लेगा ही, संभालेगा अपने आप को, तो उसके लिए हमें उनके भविष्य के लिए क्यों करना चाहिए इतनी चिंता, प्रॉपर्टी बना के क्यों रखनी चाहिए, हमें सिर्फ भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए जब तक वो हमारे ऊपर निर्भर है, तभी तक उनकी देखभाल करनी चाहिए जब तक हमारे ऊपर निर्भर है, बाद में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और हम भक्ति करेंगे अच्छे से तभी हमारे जो हमारे पर निर्भर है उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज भगवान को क्या आगे हम ये कहते हैं कि अगर हम भगवान अच्छे भक्त बन जाएं तो हमारा परिवार कृपा जिस तरह जो इन देखे हमने भक्तों के लिए दे रखे, भगवान को उनके पीछे पड़ रहे, ले लो कुछ तो ले लो, भगवान पीछे पड़ जाते ऐसे। अगर इस तरह हम भक्ति करेंगे, जैसे मैंने तीन चार भक्तों का नाम लिया, उस तरह भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे पीछे पड़ेंगे कि ले लो कृपा ले लो। नहीं तो अगर हम भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमें भगवान के पीछे पड़ना पड़ेगा भौतिक वस्तु के लिए। इसलिए हमें इस तरह इस जीवन में इस भक्ति का हमें करने का मौका मिला प्रभुपाद की कृपा से, तो हमें हमेशा यही ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति करें कि जिससे कि परिवार का जो हमारे के लेकर उनका उद्धार हो सके। बाकी उनके कर्मों के हिसाब से जो उनके जीवन में लाए हो हमारे पे निर्भर, वो उनके मिलेगा ही। अब चाहे अगर ऐसा रहता है कि कोई 12-16 घंटा काम करने वाला भी रहता है तो उसके नसीब में जितना उसको उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं कि 12-16 घंटा काम करने वाला उसको ज्यादा पैसे इकट्ठा ले करता है, जो 8 घंटे काम करने वाला भी उसको भी उसके नसीब में जितना उतना ही मिलता है, 16 घंटा काम करने वाला भी उसको भी उसके उस नसीब में जितना उतना ही मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें भक्ति के मार्ग पे चलते हुए भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए कम से कम, जाके भगवान सब कुछ देख ले। क्योंकि जो कुछ भी होता है भगवान ही सब कुछ उसके करते हैं। अगर हम पूरा हमारे भगवान कहते हैं कि ना कि तुम मेरे से जितना शरणागत हो गए मैं वैसे तुम पे आदान प्रदान करूंगा, अगर हम इसी तरह अगर हम अच्छी तरह भक्ति करते हुए भगवान के शरणागत होकर भक्तों के संग में अच्छी तरह रहकर दोष न देखते हुए अगर हम उनके करेंगे सेवा करेंगे तो भगवान हम पे प्रसन्न रहेंगे। अरे किसी को कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पा टिप्पणी रहेंगे तो बताइए।
प्रश्न ये प्रश्न ये परपोटे प्रभुपाद ने क्या जो ब्रह्मांड का क्या बताया उसके बारे में?
प्रभुपाद ने ब्रह्मांड परपोट में ये बताया कि उन्होंने अपने आप, उनका प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने परपोट पे क्या बताया। प्रभुपाद ने परपोट में आपने स्टार्टिंग में थे, मैंने स्टार्टिंग क्लास शुरू किया उस वक्त क्या कहा था मैं परपट पे क्या लिखा क्या बताने और परपट के बाद क्या लिखा क्या बताने वाला हूं मैं, वो बताया। अब वही प्रश्न आपका परपट में क्या लिखा बताओ, ठीक है फिर भी मैं बता देता हूँ तो ले रहे परपट में अगर परपट के अनुसार जाएंगे तो पूरा विश्व रूप के बारे में वर्णन करेंगे, भगवान ने इतने पग में ये किया, भगवान ने अपने शरीर के साथ बाकी ईश्वर का कैसे उद्धार किया कैसे नाप किया। तो विश्व रूप में क्या आता है कि भगवान के मुख पे क्या है, उनके छाती पे क्या है, उनके जांघों पे क्या है, उनके पैरों पे क्या है, ये सब वर्णन है परपट की सबसे वो बता गया। जय
श्रीमन हरिबंधु प्रभु की, श्रीमन हरिबंधु प्रभु की जय।